यशोदानन्दन व्रज जनरञ्जन यशोदानन्दन व्रज जनरञ्जन यमुना Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna. कृष्ण भक्तवृंद की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आज हम भगवद गीता के इस श्लोक के ऊपर कुछ चर्चा करेंगे। भगवद गीता के नवम अध्याय के नौवां अध्याय और 22 नंबर श्लोक है। इस श्लोक लोगों के पास मोबाइल में निकलेगा है? ठीक है, ध्यान से सुनिए, मेरे बात हो रही है। भगवद गीता का नौवां अध्याय, जिस अध्याय का नाम है परम गुह्य ज्ञान, और श्लोक संख्या है 22। तो कृपया मेरे बात दोहराने का प्रयास करें एक बार। अनन्या चिंतयन्तो मां, अनन्या चिंतयन्तो मां, ये जना पर्युपासते, ये जना पर्युपासते, तेषां नित्याभियुक्तानां, तेषां नित्याभियुक्तानां, योगक्षेमावहाम्यहम्, योगक्षेम वहाम्यहम्। एक अनन्या चिंतयन्तो मां, ये जना पर्युपासते, तेषां नित्याभियुक्तानां, अनुवाद और तात्पर्य डिवाइन ग्रेस श्री भक्ति वेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद जी के द्वारा। श्री प्रभुपाद की अनुवाद। किंतु जो लोग अनन्य भाव से मेरे दिव्य स्वरूप का ध्यान करते हुए निरंतर मेरी पूजा करते हैं, उनकी जो आवश्यकता होती है उन्हें मैं पूरा करता हूँ, और जो कुछ उनके पास है उसकी रक्षा करता हूँ। ये कौन बोल रहा है इसको? भगवान कृष्ण बोल रहे हैं इसको। तात्पर्य, जो एक क्षण भी कृष्ण भावनामृत के बिना नहीं रह सकता, वह 24 घंटे कृष्ण का चिंतन करता है और श्रवण कीर्तन स्मरण पाद सेवन वंदन अर्चन और दास्य सत्य भाव तथा आत्मनिवेदन के द्वारा भगवान के चरण कमलों की सेवा में रत रहता है। ऐसे कार्य शुभ होते हैं और आध्यात्मिक शक्ति से पूर्ण होते हैं, जिससे भक्त को आत्म साक्षात्कार होता है और उसकी यही एकमात्र कामना रहती है कि वह भगवान के सानिध्य प्राप्त करे। ऐसा भक्त निश्चित रूप से बिना किसी कठिनाई के भगवान के पास पहुंचता है, यह योग कहलाता है। ऐसा भक्त भगवत कृपा से संसार में पुनः नहीं आता। क्षेम का अर्थ है भगवान द्वारा कृपामय संरक्षण। भगवान योग द्वारा पूर्णतया कृष्ण भावना भावित होने में सहायक बनते हैं, और जब भक्त पूर्ण कृष्ण भावना भावित हो जाता है तो भगवान उसे दुखमय बद्ध जीवन में फिर से गिरने से उसकी रक्षा करते हैं। ओम ज्ञान तिमिरंधस्य ज्ञानंजना शलाकया चक्षुर्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं जैन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात देशतारिणे। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत श्री राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यस्य कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदान्याय कृष्णप्रेमाप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्यः नामिने गौरतिसे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। आराध्यो भगवान् ब्रजेशतनय तदाम वृन्दावनम् रम्या काचिदुपासना ब्रजवधूं वर्गेण वा कल्पितम् श्रीमद्भागवतं प्रमाणममलं प्रेमापुमार्थो महान् श्रीचैतन्य महाप्रभुर्मतमिदं तत्रादरो न परं श्रीचैतन्य महाप्रभुर्मतमिदं तत्रादरो न परम्। गुरवे गौरचंद्राय राधिकाय पदाले कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। हरे कृष्णा। तो आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है ये रविवार के प्रीतिबोध कार्यक्रम में। तो सबसे पहले तो मैं श्री प्रभु जी का आभार व्यक्त करना चाहता हूँ जो कि हम लोग को यहाँ पे बुलाए। तो आज सभी भक्त लोग मिलकर मुझे एक घंटा श्रवण करिए। मैं एक घंटा कुछ बोलूँगा आप लोग श्रवण करिए उसको। तो आज हमने जैसे कि शुरुआत किया कि भगवद गीता के नवम अध्याय का 22 नंबर श्लोक हमने अभी अभी गाया जहाँ पे भगवान यह बता रहे हैं कि जो उनकी अनन्य भाव से उनकी भक्ति करता है या जो उनके शरण में आ चुका है उनके किस प्रकार से भगवान उनके पास जो कुछ है उसकी रक्षा करते हैं और जो कुछ उनके पास नहीं है उसको प्रदान करते हैं, है ना। जैसे कि इससे पहले कुछ श्लोकों में भगवान यह बता चुके हैं कि ते पुण्य महासाध सुरेंद्र लोकम, कि भगवान बताते हैं कि जो लोग देवताओं की भक्ति करते हैं, जो लोग देवताओं की भक्ति करते हैं वहाँ कहाँ पे जाते हैं, देवलोक में जाते हैं। स्वाभाविक है जिनकी भक्ति करेंगे वो वहाँ पे जाएंगे ना। तो देवताओं की जो लोग भक्ति करते हैं वो कहाँ जाते हैं, एक्चुअली देवताओं की पूजा होता है, भक्ति एकमात्र भगवान कृष्ण का ही होता है एक्चुअली। तो जो देवताओं की पूजा करते हैं वो देवलोक में जाते हैं, और देवलोक में तो जाते हैं लेकिन जैसे ही उनके पुण्य खत्म होते वापस कहाँ पे आते हैं, वापस इस मर्त्य जगत में आते हैं, है ना। तेतम भुक्त्वा स्वर्गलोकम विशालम छिड़े पुण्य मर्त्य लोके विशन्ति। जैसे ही उनका पुण्य क्षीण होता है क्या होता है, उनका वापस पतन हो जाता है इस मर्त्य जगत में, एक भौतिक संसार में वापस उनका पतन हो जाता है, है ना। जब तक उनका जो पुण्य रहता है, पुण्य से वो स्वर्गलोक में कुछ भोग करते हैं, उनको कुछ सुख की प्राप्ति होती है, लेकिन जैसे ही वो पुण्य क्षीण होता है भगवान बोलते हैं कि वापस वो इस भौतिक जगत में गिर पड़ता है। तो प्रश्न उठता है कि ठीक है, देवताओं की भक्ति करेंगे तो देवलोक में जाएंगे, और उनके जब पुण्य खत्म होंगे तो कहाँ आ जाएंगे, वापस इस मर्त्यलोक में आएंगे। तो अगर आपकी भक्ति करते हैं, भगवान कृष्ण बोलते हैं ना इस लोगों को, तो अगर आपकी भक्ति करते हो व्यक्ति कहाँ जाएगा, तो भगवान कहते हैं कि अगर कोई मेरी भक्ति करता है और अनन्य भाव से करता है, अनन्य चिंतन तो माम ए जना परिपासते तेषां मिथ्यावयुक्तानां योगक्षेमवहम्यहम्। वो तो मेरे धाम को तो आएगा, लेकिन साथ साथ में जो यहाँ इस भौतिक जगत में रहते हुए भी अगर वो मेरी भक्ति को स्वीकार किया है, अनन्य भाव से मेरा भक्ति किया हुआ है, तो मैं उसका योगक्षेमवहम्यहम्, भगवान बोलते हैं कि मैं उसकी रक्षा करता हूँ और साथ साथ में क्या करता हूँ, जो उसके पास नहीं हो देता भी हूँ, जो उसके पास है उसकी रक्षा भी करता हूँ, योग मतलब उसको देता हूँ, जो उसके पास नहीं है उसको देता हूँ, और उसकी उसके पास जो है उसकी रक्षा करता हूँ। मतलब क्या बोल रहे हैं भगवान, जो उसके पास है मैं उसकी रक्षा करता हूँ, अर्थात भगवान वाचमैन ही करते हैं, है ना। रक्षा करना किसका कार्य होता है, वाचमैन का होता है ना, जो कि रक्षा करता है। तो भक्ति अगर करते हैं भगवान के तो हमको प्रदान भी करते हैं और साथ साथ में उस चीज की रक्षा भी करते हैं। हालांकि यहाँ पे अनन्य भक्ति की बात कही गई है, तो एक जो अनन्य भक्त होता है, जो भगवान की भक्ति करता है, जिन्होंने पूर्णतः भगवान के शरण को ग्रहण कर लिया है, अनन्य भक्त जो होता है या एक शुद्ध भक्त जो होता है, कभी भी भगवान से कुछ प्राप्त करने की चाहत नहीं रखता है, इसको अनन्य भक्ति प्राप्त कहते हैं। अनन्य भक्ति किसको कहते हैं, कि भगवान से कुछ भी प्राप्त करने की इच्छा नहीं करता है, एक अनन्य भक्त है। लेकिन फिर भी भगवान यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, भले से उस वो मुझसे कुछ प्रार्थना नहीं करता है, फिर भी मैं उसको देता हूँ, साथ साथ में जो उसके पास है उसकी रक्षा भी करता हूँ। तो कभी भी एक भक्त जो है ना, कभी भी भगवान से कुछ मांगता नहीं है। एक ब्रज के एक संत हुए बहुत बड़े, उनका नाम बिंदु है। कुछ महात्माओं का कहना है कि भगवान ने उनको दर्शन दिया था, तो हमेशा भगवान से प्रार्थना करते थे कि हे प्रभु, मैं आपके सामने कभी भी आके आपका दर्शन कर रहा हूँ, तो कभी भी आपका दर्शन करते करते अगर मेरी बुद्धि बिगड़ गई, आपका दर्शन करते करते मेरी कभी भी बुद्धि बिगड़ गई, बुद्धि बिगड़ना मतलब कि मैं आपसे कुछ मांग लिया, आपका दर्शन करते करते कभी भी मेरी बुद्धि अगर बिगड़ गई, आपसे कुछ मैं मांग लिया, तो प्रभु आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि मुझे कुछ देना मत। ये प्रार्थना करते हैं बिंदु जी, ये प्रार्थना करते हैं कि कभी भी आपके दरबार में आके आपका दर्शन करते हुए मेरी बुद्धि कभी भी बिगड़ गई, अगर मैं कुछ आपसे मांग लूं तो कभी भी देना मत, क्योंकि मैंने मांग लिया और आपने दे दिया तो प्रेमी नहीं मैं मजदूर कहलाऊंगा, तब कहां प्रेमी रह गया, मैं मजदूर कहलाऊंगा ना, कि आज हमने आपके लिए कुछ किया, आपकी कुछ सेवा किया और आपसे कुछ मांग लिया, है ना। मजदूर लोग दिन भर काम करते हैं ना, और शाम को उनको पैसा मिल जाता है, तब प्रेमी नहीं रह गया, मैं क्या कहलाऊंगा, मजदूर कहलाऊंगा। इसलिए कभी भी आपका दर्शन करते हुए मेरी बुद्धि बिगड़ गई ना, तो मैं कुछ मांग बैठू आपसे तो आप कभी भी कुछ मुझे देना मत। ये होता है अनन्य भक्ति, ये होता है शुद्ध भक्तों का भाव, जो कि भगवान से कभी भी नहीं मांगते हैं। ये सेम चीज प्रहलाद महाराज, जब नरसिंह भगवान ने उनको दर्शन दिया प्रहलाद महाराज को, तो उस समय पूछते हैं कुछ मांगो, तो उस समय प्रहलाद महाराज सुखदेव गोस्वामी बात कहते हैं कि प्रहलाद महाराज बोलते कि प्रभु मैं बनिया नहीं हूं, वहां पर कुछ नहीं मांगा उन्होंने। और यह भी देखते हम कि जो एक शुद्ध भक्त होता है ना, अपनी रक्षा तक की भी प्रार्थना नहीं करता है। एक्चुअली भागवत में नवम स्कंद में देखेंगे कि जहां पे अम्बरीश महाराज का चरित्र आता है, तो अम्बरीश महाराज ने जब एकादशी व्रत का पालन किया हुआ था, और जब द्वादशी व्रत द्वादशी पालन का समय आ गया पारायण का समय, तो उस समय क्या उन्होंने जल से पालन कर दिया, और दुर्वासा मुनि आ गए, उनको लगा कि मेरे से पहले खा लिया, तो उनको बहुत क्रोध आ गया। तो दुर्वासा क्रोधवश क्या किए, तुरंत ही एक कृत्य को प्रकट, एक बहुत खतरनाक राक्षसी को प्रकट कर दिया क्रोध से, एक कृत्य को प्रकट किया। सुखदेव गोस्वामी पाद वर्णन करते हैं कि उस कृत्य इतनी भयानक थी, काल स्वरूप का कृत्य थी कि जिसको देखने से व्यक्ति मर जाए, इतनी भयानक कृत्य को, इतना क्रोध था दुर्वासा ऋषि को, उन्होंने कृत्य को प्रकट किया। और कृत्य जब प्रकट हुई किसको मारने के लिए, अम्बरीश महाराज को। तो सुखदेव गोस्वामी पाद कहते हैं कि अम्बरीश इतना धीर पुरुष था कि एक कदम भी पीछे नहीं हटा, और भगवान से कदम पीछे तो छोड़ो, भगवान से अपनी रक्षा के लिए भी प्रार्थना नहीं कर दे कि प्रभु प्रभु अच्छा मां रक्षा मां पाई मां पाई मां, बिल्कुल नहीं गए। इतना धीर पुरुष था सुखदेव गोस्वामी पाद वर्णन करते हैं कि अम्बरीश महाराज इतना धीर पुरुष थे कि अपनी रक्षा की भी प्रार्थना नहीं किया वहां पे, और एक कदम पीछे भी नहीं हटे, उस कृत्य को बिल्कुल डरे नहीं। तो कभी भी एक जो शुद्ध भक्त होता है ना, तो अपने रक्षा के लिए प्रार्थना करता है और ना तो कुछ प्राप्त करने के लिए प्रार्थना करता है, कभी भी वो प्रार्थना नहीं करता है। और यही देख सकते हैं हम कि सुदामा के जीवन में, सुदामा के जीवन में भी कितना उसकी दुर्गति हो चुकी थी, कितना गरीबी उसके छा गई थी, हालांकि उसको मालूम था कि जो मेरा मित्र है वो द्वारका का राजा है, अगर मैं उसको पता तक चले उसके पास इंफॉर्मेशन मिल जाए तो मुझे सब कुछ प्राप्त हो जाए, लेकिन फिर भी कभी भी कुछ नहीं माना। यहाँ तक कि गए भी, जब द्वारका गए सुदामा, जाके वापस तक आ गए, लेकिन कुछ भी मांगा नहीं। भगवान सब जानते थे कि क्या हालत है इस सुदामा का, लेकिन फिर भी वहां पे उन्होंने अपनी हालत को नहीं व्यक्त किया, भगवान से कुछ भी नहीं मांगा। हालांकि भगवान ने दिया उनको, लेकिन कुछ भी उन्होंने मांगा नहीं। तो इस प्रकार से ये जो शुद्ध भक्त होता है ना, वो कभी भी जो अनन्य भाव से भगवान की भक्ति करता है ना, वो कभी भी भगवान से कुछ भी मांगता, मांगने की जरूरत भी नहीं पड़ती है, क्योंकि भगवान तो यहाँ पे बोल रहे हैं ना, योग क्षेम वहां पे हम यहाँ पे भगवान बोल रहे हैं, है ना। लेकिन क्या करें, हमारी भीख मंगी जाती नहीं है, हम जब देखो तब भगवान से मांगते ही रहते, कितना कुछ भगवान ने दिया है, क्या क्या नहीं दिया भगवान ने, ये जो दो आंखें दी है भगवान, उसमें इतनी शक्ति दी है कि पूरा दुनिया को देखने की शक्ति दिया हुआ है ना, सांस ले रहे हवा मिल रहा है, ये सब कहाँ, ये सब भगवान के ही देन है ना। सब तो छोड़ो, दिन भर में 3 किलो खाते हो, पचाने की शक्ति कौन देता है तो भगवान देते ही है, ऐसा नहीं कि नहीं, आप मांगेंगे तभी देते हैं। एक नहीं भक्ति करने वाले को भी भगवान भरण पोषण करते हैं, ऐसा नहीं कि भूखा मरता है। तो कहने का तात्पर्य यही, इस श्लोक से हमको शिक्षा लेना चाहिए कि कभी भी हमको अपनी भक्ति को बढ़ाना चाहिए और भगवान से कभी भी कुछ भी नहीं मांगना चाहिए। देखिए, वास्तव में जो शुद्ध भक्त होता है ना, वो कभी भी भगवान से ना तो अपनी रक्षा की प्रार्थना करता है और ना तो उनसे कुछ मांगता है, कभी भी कुछ नहीं मांगता है। और ऐसे भक्त, जो ऐसे शुद्ध भक्त होते हैं ना, ऐसे शुद्ध भक्त जिन्होंने हमको कृष्ण भक्ति दिया हुआ है, या जिन्होंने हमको मंदिर दिया हुआ है, जिन्होंने हमको कृष्ण प्रसाद दिया हुआ है, ऐसे भक्तों का, अगर ऐसे शुद्ध भक्तों का जो कि अनन्य भाव से भगवान की भक्ति करते हैं, ऐसे भक्तों का हम जीवन में जो हमको चीजें उनसे मिला हुआ है ना, हम उनके ऋण को कभी भी चुका नहीं सकते, कभी भी नहीं चुका सकते हैं। महाभारत में एक श्लोक, सांडिल्य ऋषि एक श्लोक को कहते हैं, वो कहते हैं कि पृथ्व्यां द्रव्यं नास्ति यद् गत्वा तद् गृणि भवेत्। ये सांडिल्य ऋषि महाभारत में श्लोक को कहते हैं कि जिसने भी हमको कृष्ण भक्ति दिया हुआ है और जिसने भी हमको मंदिर दिया हो, जिसने भी हमको कृष्ण प्रसाद दिया हो, जिसने भी हमको भक्तों की सोसाइटी दी हुई है, उस भक्त का कभी भी हम चाहते हुए भी लिखते हैं कि पृथ्व्यम द्रव्यम नास्ति, पूरे पृथ्वी को बेच डाले फिर भी उसके ऋण को चुकता नहीं कर सकते। अगर इस बात के ऊपर विचार किया जाए तो हम कभी भी जन्म जन्म तक कभी भी हम ऋण चुकता नहीं कर पाएंगे। श्री भक्ति वल्लभ स्वामी श्री प्रभुपाद जी का कभी नहीं चुकता कर पाएंगे, क्योंकि उन्होंने हमको क्या दिया, कृष्ण भक्ति दिया, इतना सुंदर मंदिर दिया, भक्तों का संग दिया, कृष्ण प्रसाद दिया, सबसे बड़ी बात जो यह है भक्तों की सोसाइटी दिया उन्होंने, मुक्ता नाम अभिसिद्धा नाम दुर्लभो, दुर्लभ है वैष्णव का संगति, लेकिन ऐसे भक्तों का उन्होंने बहुत खड़ा कर दिया श्री प्रभुपाद ने, तो हम कभी भी उनके ऋण को चुकता चाहते भी नहीं कर सकते। इस बात को शांति जैसे बताते हैं कि पूरी पृथ्वी को बेच डाले लेकिन फिर भी हमके ऋण को चुकता नहीं कर पाएंगे। हमको अगर उनके ऋण को चुकता करने का अगर प्रयास करना हम चाहते हैं तो भी नहीं कर पाएंगे। इसलिए बेस्ट है कि हम अपने आप को शुद्ध कर ले ताकि उनके सामने मुंह दिखाया लायक बन जाए, है ना, अपने आप को शुद्ध कर ले या शुद्ध होने के प्रोसेस में चले जो उन्होंने बताया है, तो एक एक तरह से हम उनके इन आचार्यों के सामने खड़ा होने के लायक बन जाएंगे, है कि नहीं। तो इसलिए प्रभुपाद जी भगवद गीता के प्रारंभ में, जब भगवद गीता प्रभुपाद जी लिखा उसके प्रारंभ में आप भूमिका को पढ़ेंगे ना, तो वहां पे प्रभुपाद जी लिखते हैं, क्योंकि गीता के कई सारे टीकाकार, कई तरह कितने गीता हो चुके थे पहले लिख चुका है, प्रभुपाद जी एक और टीका लिख रहे थे और उसकी भूमिका में इस बात को प्रभुपाद जी ने लिखा हुआ है कि इस गीता को जो मैं लिख रहा हूं अगर इसको पढ़कर कोई एक भी विशुद्ध भक्त बन गया ना तो समझ लो कि मेरा ये गीता लिखना सफल हो गया। ये प्रभुपाद जी एक भूमिका में लिखा है प्रभुपाद जी ने कि एक भक्त अगर शुद्ध भक्त हो गया ना तो गीता लिखना मेरा सफल हो जाएगा। यही हमारे आचार्य हमसे चाहते हैं कि हम शुद्ध भक्ति, क्योंकि जो भक्ति के मार्ग में आए हैं तो अनन्य भक्ति हम करें, धीरे 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 अपनी भक्ति को बढ़ाए आगे। तो कभी भी एक शुद्ध भक्त जो होता है कभी भी वो अपने रक्षा की प्रार्थना नहीं करता है और ना तो भगवान से कभी भी कुछ मांगता है। लेकिन देखिए भले से वो भक्त भगवान से कुछ नहीं मांगता है लेकिन फिर भी भगवान तो देते हैं, भगवान तो देते हैं। तो एक दृष्टिकोण से देखा जाए तो भक्त भगवान को तकलीफ तो दिया, भक्त नहीं मानता है, मान लो जो अनन्य भाव से भक्ति करता है वो कभी नहीं मानता है, लेकिन एक दृष्टिकोण से ऐसा देखा जाए तो भगवान को देना तो पड़ा ना, भगवान को देना तो पड़ा, तो एक दृष्टिकोण से भक्त भगवान को तो कष्ट ही दे रहा है ना। तो इस पे देखिए श्लोक जो भगवान भगवद गीता में बोले के 22 नंबर श्लोक में कि अनन्य चिंतन कि अगर वो अनन्य भाव से भक्ति करता है मेरा तो ये मेरा कर्तव्य बनता है, ये मेरा कर्तव्य है कि मैं उनको देता हूँ उनको योग और क्षेम को वहां। योग मतलब आवश्यकता, जो उसको आवश्यकता वो देता हूँ, और क्षेम मतलब उसकी सुरक्षा करता हूँ, उसको आश्रय प्रदान करता हूँ और वहां में मतलब वहन करता हूँ। तो यहाँ पे देखिए इस श्लोक में, इस श्लोक के ऊपर श्री विश्वनाथ चतुर्थ ठाकुर टीका लिखते हुए कहते हैं, बहुत सुंदर टीका लिखते हैं एक्चुअली, ये अंतिम शब्द जो है ना योग क्षेम वहाम्यम, इसके ऊपर टीका लिखते हुए श्री विश्वनाथ चतुर्थ ठाकुर कहते हैं कि देखिए यहाँ पे भगवान योग क्षेम करो भी बोल सकते थे, संस्कृत वर्ड है ना, योग क्षेम करो मतलब जो उसको चाहिए या जो उसके पास है मैं उसकी रक्षा करो मतलब करता हूँ, लेकिन करो भी भगवान नहीं बोले, क्या बोल रहे हैं, वहां भी बोल रहे हैं, करो भी और वहां भी बहुत अंतर है। विश्वनाथ चतुर्थ ठाकुर बताते हैं कि यहाँ पे भगवान वहां भी क्यों बोलते हैं, करो भी बोल सकते कि करता हूं मैं, लेकिन भगवान कहते कि मैं वहां भी वहन करता हूं, मतलब मैं उसके भार को वहन करता हूं। जैसे कि एक व्यक्ति होता है ना गोने के बोझा को उठा कर लेके चलता है ना, वैसे भगवान भक्त को भार को लेकर होते हैं, विचार करिए। इसलिए यहाँ पे वहां भी शब्द भगवान बोल रहे हैं, करता हूँ वहन करता हूँ भी बहुत अंतर है, वहां भी शब्द बोलते भगवान। ये विश्वनाथ चतुर्थ ठाकुर बहुत सुंदर बात बताते हैं टीका लिखते इस श्लोक के ऊपर कि भगवान वहां भी क्यों बोल रहे हैं, करो भी क्यों नहीं बोले, वहां भी इसलिए बोले क्योंकि भक्त के भार को लेकर भगवान धोते हैं। तो क्यों ढोते हैं, क्योंकि भगवान भक्त वत्सल है, नाम सुने ना भगवान को भक्तवत्सल, भक्तवत्सल मतलब क्या, भक्तवत्सल मतलब क्या, भक्त वत्सल मतलब क्या बताइए भाई, भक्तों की रक्षा करने वाला है। भक्तवत्सल, वत्सल मतलब रक्षा करने वाला, भक्तों की रक्षा करने वाला, जिसको भक्तवत्सल कहते हैं ना। तो भक्तवत्सल भगवान को क्यों कहते हैं, एक्चुअली कई आचार्यों ने उसके ऊपर बहुत टीका लिखा हुआ है कि भक्तवत्सल भगवान को क्यों कहते हैं। देखिए, एक तो अर्थ है कि भगवान भक्तों की रक्षा करते हैं, एक तो सीधा सीधा अर्थ हो गया। लेकिन रूप गोस्वामी पाद जहाँ पे भक्ति के पांच विधियों को बताते हैं, उसमें भागवत श्रवण की एक विधि को बताते हैं। भागवत श्रवण करना मतलब केवल तोते की तरह बोलना और सुनना और उसको रटना ही नहीं भागवत श्रवण होता है। हम जब तक भागवत के अर्थों का रसास्वादन नहीं करेंगे तब तक भागवत श्रवण नहीं बोला जाता है। हमको भागवत के अर्थों को कि अर्थानाम आस्वादनम स्वरसिका, ऐसे आचार्यों के द्वारा जो बताए गए उनके तात्पर्य है या उनके जो टीका है उनसे समझ के भागवत के अर्थों का रसास्वादन करना, ये भागवत का श्रवण करने का सही बताया गया है। रूप गोस्वामी पाद बता रहे हैं। तो भक्तवत्सल क्यों कहते हैं भगवान को? तो एक आचार्य कहते हैं कि वत्सल मतलब क्या, वत्सल मतलब वत्सला गाय को कहते हैं। वत्सला गाय का नाम है, एक गाय है जिसकी नाम है वत्सला। तो वत्सला गाय की उपमा देते हैं, भक्त के साथ में क्या लगाते हैं, इस वत्सला गाय की उपमा दिया जाता है, दिया गया हुआ है कि वत्सला गाय मतलब जैसे कि आपने देखा है कि जब गाय बच्चे को जन्म देती है, किसी ने देखा है बच्चे को जन्म देते हुए गाय को, किसी ने देखा है, देखा है, कौन कौन देखा है? तो जब गाय बच्चे को जब जन्म देती है ना, जैसे जैसे तुरंत जब भी बच्चा पैदा होता है नीचे जमीन पे गिरता है तो उस समय देखें वो बच्चा खून से मांस से बहुत सारे कचरे से पूरा भरा रहता है ना, क्योंकि अभी जस्ट उसकी उत्पत्ति हुई है, जस्ट वो पैदा हुआ है, तो पूरा गंदगी से वो पूरा मांस खून इत्यादि से वो लथपथ रहता है पूरा। लेकिन आप उस गाय को देखें कि वो गाय क्या करती है कि उस बच्चे को अपने जिह्वा से चाटती है। विचार करिए, क्या गाय मांसाहारी है, गाय मांसाहारी है नहीं, शाकाहारी है, फिर भी अपने बच्चे के उस मांस खून इत्यादि जो भी कचरा हो उसको धोती है। कैसे धोती है, अपनी जिह्वा से धोती है, चाटती है। तो यही उपमा दिया गया कि जिस प्रकार से गाय अपने बच्चे को, वत्सला गाय अपने बच्चे को किस प्रकार से धोती है, भगवान अपने भक्तों को उस प्रकार से धोते हैं। बहुत सुंदर बात ही बताई गई है आचार्यगण, ये है आचार्यों की टीका, इस बातों को प्रकट करते हैं कि भगवान अपने भक्तों से इतना प्रेम करते हैं और इतना प्रेम करते हैं अपने भक्तों से कि कभी कभी वही बछड़ा उस गाय की रक्षा करने वाला जो ग्वाला होता है ना, ग्वाला जो होता है जो उसकी जो उसको खिलाता पिलाता है पूरे साल उसको खिलाता पिलाता है, लेकिन अभी अभी जो बच्चे को जन्म दिया उस गाय ने कभी कभी उसके प्रेम वश होकर इस ग्वाले को भी कभी कभी सींग मार देती है, उसे इतना प्रेम करते हैं कि वो ग्वाले को भी कभी कभी सींग मार देती है। इसी प्रकार भगवान अपने भक्त की रक्षा करने के लिए कभी कभी ब्रह्मा और शिव की भी पट्टी बढ़ाते हैं लेकिन उनकी रक्षा जरूर करते हैं। कभी इधर का शास्त्रों के विधि विधानों का इधर की उधर वेद और शास्त्रों को इधर से उधर कर देते हैं लेकिन अपने भक्त की रक्षा जरूर करते हैं भगवान। इसलिए तो कहते हैं ना, प्रबल भक्त के पाले पड़कर प्रभु के नियम बदलते देखा, अपना मान टले टल जाए पर भक्त का मान न टलते जाए। अपनी प्रतिज्ञा कुछ भी हो जाए टूट जाए कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है लेकिन अपने भक्त की रक्षा जरूर करूंगा मैं, ये भगवान करते हैं। देखिए ना महाभारत के युद्ध में, हालांकि भगवान ने क्या कहा था, युद्धे शस्त्र न गृणामि, युद्ध में मैं शस्त्र को धारण नहीं करूंगा, है ना, ये भगवान ने प्रतिज्ञा लिया था ना, वचन दिया था कि युद्धे शस्त्र न गृणामि, कि मैं युद्ध में शस्त्र को नहीं धारण करूंगा। लेकिन जब अर्जुन को बचाने की बात आई तो कहां गई आपकी प्रतिज्ञा, तब चक्का उठाया, अभी कहां गई प्रतिज्ञा, जाए आपके पापड़े के तालाब में, जा जाए, लेकिन भक्त की रक्षा करूंगा, अर्जुन को कुछ नहीं होने दूंगा क्योंकि अर्जुन मेरा भक्त है। हालांकि भगवान ने वचन दिया था कि मैं यह शस्त्र को नहीं उठाऊंगा, लेकिन समय आया तो चक्का उठाया, चक्का उठा के दौड़े लेकर अर्जुन की रक्षा करने के लिए। तो इस प्रकार से भगवान भक्त की रक्षा करते हैं। तो देखिए ये जो भगवान भक्तों की रक्षा करना ना, ये भगवान का स्वभाव है। आप जानते हैं कि स्वभाव कभी भी व्यक्ति का चेंज नहीं होता है। रक्षा करना है भगवान का, भक्तों की रक्षा करना है भगवान का स्वभाव है। धंधा नहीं है, व्यक्ति धंधा चेंज करता है लेकिन स्वभाव उसका कभी चेंज हुआ? हम इतने दिन से कृष्ण भावना में लगे हुए, अपना स्वभाव चेंज हुआ? कितने दिन से जप कर रहे, माला कर रहे, भगवान का दर्शन कर रहे, स्वभाव चेंज हुआ? समय समय पर वो स्वभाव प्रकट हो ही जाता है ना? कितना भी हम रोकने का प्रयास करेंगे लेकिन वो प्रकट हो ही जाता है। स्वभाव नेवर चेंज, वो कभी भी चेंज नहीं होता है, कभी भी स्वभाव चेंज नहीं होता है। एम नो जाए, है ना माता जी? कहते हैं ना, जाते मरे तो न हो जाए, एक मरने के बाद भी नहीं जाता है ना? मरने के बाद भी ये स्वभाव नहीं जाता। तो भगवान का ये स्वभाव है भक्तों की रक्षा करना, धंधा नहीं है, स्वभाव है। हमेशा भगवान के भक्तों की रक्षा करते हैं। देखिए ये जो सरलता स्वभाव, ये जो स्वभाव जो है ना, अगर किसी को अंदर ये नम्रता, सेवा करने की भावना, जो साधु के लक्षण बताएगा ना, तिक्षवा करो कासु इदम सर्वदेहिनाम अजात सत्रवा साधवा साधु भूषणा, ये साधु के आभूषण है। तो इस प्रकार के जो भी गुण हमको भक्तों में दिखता है ना, समझ जाइए कि ये उसके पिछले जन्म के बहुत अच्छे अच्छे कर्म थे। वही कर्म, पिछले जन्म का जो कर्म है ना, हमारे स्वभाव के रूप में आता है। पिछले जन्म का कर्म हमारे स्वभाव के रूप में आता है। अगर किसी व्यक्ति को क्रूर देख रहे हैं कि वो क्रूर है, उसका स्वभाव बहुत गंदा है, तो समझ जाएगा वो पिछले जन्म में बहुत पाप किया हुआ था, क्योंकि पिछले जन्म का कर्म उसके कर्म ही उसके स्वभाव बन के आता है पिछले जन्म का। और कोई अच्छा है तो समझ जाएगा उसका पिछला जन्म बहुत सुंदर था। तो ये भगवान का स्वभाव है भक्तों की रक्षा करना। फिर भी प्रश्न उठता है कि फिर भी अगर भगवान रक्षा करते कुछ भी है, भार तो हुआ, भले से भगवान भक्त नहीं चाहता है लेकिन फिर भी भगवान करते हैं। और इस प्रकार से जैसे मैं गाय की उपमा दिया, किस प्रकार से अपने बच्चे की रक्षा कर रही है, किस प्रकार से बोझा ढोने वाले की उपमा दिया, ये सारे भगवान रक्षा तो करते हैं ना, तो एक तरह से भार तो हुआ, हुआ कि नहीं? आप लोग क्या बोलते हैं? एक दृष्टिकोण से देखा जाए भार तो हुआ है, भले से भक्त नहीं चाहता है लेकिन भगवान करते तो है ना, एक तरह से वजन तो हुआ ना उनके ऊपर। लेकिन फिर भी विश्वनाथ चतुर्थी ठाकुर भगवान के ही बातों को रखते हुए इसी श्लोक के, गीता के इसी श्लोक के टीका में लिखते हैं कि भगवान कहते हैं कि संकल्प कोटि, संकल्प मात्रेन कोटि ब्रह्मांड अहम पालयति। विश्वनाथ चतुर्थी ठाकुर कहते हैं कि संकल्प मात्रेन अनंत कोटि ब्रह्मांड, जो कि भगवान केवल संकल्प मात्र से पूरे ब्रह्मांड को चलाते हैं। विश्वनाथ चतुर्थी ठाकुर कहते हैं कि केवल संकल्प मात्र से, भगवान इच्छा करने मात्र से पूरा ब्रह्मांड का पालन पोषण होता है। तो भगवान कहते हैं कि एक भक्त का, एक छोटे से भक्त का पालन पोषण करना कब आ रहा है, मेरे लिए कौन सा भार है वो? ये तो उसी प्रकार से हो गया कि जैसे कि टाटा अंबानी बिरला को बुला जाए कि भाई एक रुपया दे दो उसको। ये भी उपमा एक्चुअली ठीक नहीं है, लेकिन संसार में समझाने के लिए उपमा दिया जाता है, लेकिन ये भी उपमा ठीक नहीं भगवान के लिए। भगवान के अनंत गुण है, भगवान हजारों करोड़ों करोड़ ब्रह्मांड को केवल इच्छा मात्र से चलाते हैं। तो ये भक्त का रक्षा करना उनके लिए क्या भार है, कौन सा भार है? लेकिन फिर भी आचार्य गण इसको और खींचते हैं, फिर भी कुछ भी बोलो भार तो हुआ कुछ भी बोलो भार तो हुआ, करते हैं मतलब भार तो हुआ। जैसे हम काम करते, कोई भी काम हो, करते हैं मतलब भार तो है ना, हो करना पड़ता है, करते हैं। तब भगवान बोलते हैं कि नहीं, भगवान बोलते हैं कि सभोग्या कांता इव सुखप्रदा। जिस प्रकार से बहुत सुंदर उपमा है, बहुत सुंदर उपमा है कि भगवान बोलते हैं कि ऐसा करने में मुझे मजा आता है, मुझे आनंद की प्राप्ति होता है। अभी मजे लेने के लिए तो कोई व्यक्ति कुछ भी करने के लिए तैयार होता है, मेहनत करता ही है ना। तो भगवान बोलते हैं कि सभोग्या कांता इव सुखप्रदा, कि जिस प्रकार से एक गृहस्थ आसक्त व्यक्ति अपने पत्नी अपने बच्चों का अपने परिवार का पालन पोषण करने के लिए खूब मेहनत करता है, हालांकि उसको बाहर से बहुत तकलीफ होता है लेकिन अंदर से बहुत सुख की अनुभूति करता है। तो इसी प्रकार भगवान बोलते हैं कि भले से वो दिख रहा है कि बाहर से बाहर है लेकिन मुझे अंदर से आनंद की प्राप्ति होता है। आप लोगों ने देखा है कि ट्रेन में मान लो कोई फैमिली जा रहा है, उनको ट्रेन पकड़ना है, तो देखे है ना कि पति क्या करता है, बैग को भी उठाया है, बच्चे को भी उठाया है, सब कुछ लेके चल रहा है, सब पूरे फैमिली पूरा परिवार को लेके चल रहा है ट्रेन पकड़ना है ना। और ट्रेन के अंदर जब जाता है तो देखता है ऊंचा रिजर्वेशन है, लेकिन देखता है कोई और सीट पे बैठा हुआ है, तो उस व्यक्ति को बोलता है उठो उठो मेरा सीट है, तो उसको ऐसा लगता है कि ऐसा ही बोल रहा होगा, तो भी थोड़ा सा हिल जाता है केवल। आप लोगों ने देखा है, देखा क्या, हम भी उसी में है, देखा क्या है। तो झगड़ पड़ता है, अपना टिकट निकाल देता, मेरा रिजर्वेशन सीट मेरे सीट पर उठो, झगड़ा कर लेता उसके साथ, और पत्नी को बोलता है उधर पैर फैला के बैठ, हिलने का नहीं उधर से है कि नहीं, उसको उसके साथ झगड़ा कर लेता, हालांकि सब कुछ जानता है ये आसक्ति है ये मोह है दुनिया भर का है, फिर भी वहां पर सब कुछ हरी हरी। तो जिस प्रकार से एक गृहस्थ आसक्त व्यक्ति पत्नी बच्चों और परिवार का पालन पोषण करने के लिए कभी इधर का उधर कर लेता है, एक्चुअली मनुष्य संहिता में इस बात को बताया भी गया है कि परिवार का भरण पोषण पालन करने के लिए थोड़ा इधर से उधर कर लेते तो भी चलता है, लेकिन सभी भार्या होना चाहिए, मनुष्य संहिता में इस बात को बताया गया है। तो जिस प्रकार से गृहस्थ आसक्त व्यक्ति अपनी पत्नी बच्चे परिवार का पालन पोषण करके उसको बाहर से दुख का अनुभव दुख होता है, बाहर से उसको तकलीफ होता है, लेकिन फिर भी रक्षा करके पालन करके उसको अंदर से मजा आता है, तो भगवान बोलते हैं कि सभोग्या कांता इव सुखप्रदा, जो उसी प्रकार मुझे सुख की प्राप्ति होती है, मुझे आनंद की प्राप्ति होती है। तो एक्चुअली भगवान जो है ना, भक्त जब उनकी भक्ति करने लगता है ना तो भगवान अपना कुटुंब मान लेते हैं, कुटुंब, क्योंकि कुटुंब का पालन पोषण करने के लिए कोई कुछ भी करने के लिए तैयार होता है ना, कुछ भी करने के लिए तैयार होता है, घर का पालन पोषण तो करना है ना, बीवी बच्चों का पालन पोषण तो करना ही है, तो कुछ भी करे तो भगवान अपना कुटुंब मान लेते हैं। भीष्म पितामह अपनी स्तुति में इस बात को बताते हैं, क्या बताते हैं कि विजय रथ कुटुंब आततोत्रे, कि अर्जुन के रथ को भगवान ने अपना कुटुंब बना लिया था, अर्जुन के जो रथ को भगवान ने कुटुंब बना लिया था, इसलिए कुछ भी करना पड़े लेकिन अर्जुन को बचाना है, अर्जुन की रक्षा करेंगे, इसलिए भगवान कैसे न कैसे करके सारथी थे ना, उस रथ को इधर से उधर किधर किधर लेके जाते थे, कभी कभी तो इतना तेज चलाते थे किसी को दिखता भी तक नहीं था, इतना तेज चलाते थे किसी को नहीं दिखता था, मारेगा कौन क्या, तो अपना कुटुंब मान लेते उस रथ को भगवान, अपना कुटुंब मान लिए थे। और इसका वर्णन अपनी स्तुति में करते हैं कि प्रभु आपने तो अपना कुटुंब मान लिया अर्जुन के रथ को, इसलिए अर्जुन का कोई बाल भी बाका नहीं कर पाया। तो भगवान अपना कुटुंब मान लेते हैं। देखिए बहुत सुंदर बात एक बताया गया है गरुड़ पुराण में, एक्चुअली मुझे इसी बात को प्रस्तुत करना था लेकिन मैंने गीता के श्लोकों से लिंक किया कि भगवान एक आश्वासन देते हैं हम सभी भक्तों को, उन भक्तों को जो भगवान की भक्ति को स्वीकार कर लिए हैं और भजन करना प्रारंभ कर चुके हैं और उनके अनन्य भाव से भक्ति करते हैं, तो भगवान कहते हैं ये विश्वास दिलाते हैं, इस गीता के श्लोक से भी विश्वास दिला रहे हैं कि योग इच्छे में वहां में हम चिंता वाली विषय नहीं, मैं उसकी रक्षा करता हूँ, उसकी रक्षा करता हूँ। लेकिन कभी कभी भक्तों के मन में प्रश्न आता है, उठता है कि अंत काले चमावेव स्मरण मुक्त्वा कलिवरम, ये बात भगवान भगवद गीता में बोलते हैं कि अंत काल में जैसी स्मृति, अंत काल में जैसी मति वैसी गति, है ना, जीवन भर आप कितना भी कुछ भी भजन भक्ति जो भी कर रहे हैं लेकिन अंत काल में अगर भगवत स्मरण नहीं आया तो सब कुछ बेकार, क्योंकि अंत समय में अगर स्मृति बनी रही भगवान की तो निश्चित रूप से हमको गति भी वैसी मिलेगी। हालांकि हम जीवन भर भक्ति किए प्रत्यक्ष हुए तो अंत में वही याद आएगा, जीवन भर नहीं किए तो फिर नहीं याद आएगा, लेकिन फिर भी इस शरीर के दोष के कारण गरुड़ पुराण में एक बहुत सुंदर बात को बताया गया है कि कफ पित्त वात आदि दोषेना, ये जो शरीर कैसे बना है, कफ पित्त वात से शरीर बना हुआ है, कफ पित्त वात आदि दोषेना, ये दोष बताया गया है। ये शरीर तीन चीजों से बना हुआ है, कफ पित्त और वात। कभी भी अगर एक इसका बैलेंस रहना बहुत जरूरी है, कभी भी ये अनबैलेंस हुआ ना तब बुखार आ जाता है, सर्दी आ जाता है, खांसी आ जाता है, कोई बीमारी हो जाता है। लेकिन जब इसका बैलेंस बराबर रहता है तो हम स्वस्थ रहते हैं। तो ये शरीर जो है ना कपोवित वात से बना हुआ है, इसलिए इसको बैलेंसिंग कपोवित वात का ये बैलेंस जो है ना बराबर रखना चाहिए, तब कभी भी बीमारी नहीं आएगा। और बीमारी आया मतलब ये अनबैलेंस हुआ। तो वहां पे उस श्लोक में, उस गरुड़ पुराण के श्लोक में भगवान श्री हरि विष्णु स्वयं अपने मुखारविंद से इस बात को बोलते हैं कि कपोवित वात आदि दोषेना, कि अगर इस दोष के कारण मद भक्तों यदि नाश मरे, इस कपित्तवात दोष के कारण अगर कभी भी ऐसा चांस बन गया कि मेरा भक्त मुझे स्मरण नहीं कर पाया, अंत समय में हो सकता है हॉस्पिटलाइज हो गया, क्योंकि शरीर जो जर्जर हो जाता है अंत समय में और काम नहीं कर सकता करता है, बुद्धि काम करना बंद कर देता है, सब कुछ धीरे धीरे छीण हो जाता है ना। तो ये दोष बताया गया शरीर में कपोवित्तवात का, तो अगर इसके कारण कभी भी अंत समय में ऐसा कुछ संयोग बन जाता है कि वो भक्त अनकॉन्शियस हो जाता है, कोमा में चला गया, अभी कोमा में गया हुआ व्यक्ति क्या स्मरण करेगा भगवान का, ऐसा चांस बन जाता है और बनता भी है, ऐसा कोई नई बात नहीं है, ये बनता भी है चांस, लोग अंत समय में कोमा में चले जाते हैं या फिर बुद्धि मति बिगड़ जाती है, बहुत बहुत कुछ झेलना पड़ता है। तो भगवान इस सांत्वना देना, उन भक्तों के लिए सांत्वना देना चाहते हैं कि जो उन्होंने भाव से भक्ति किया, लेकिन अंत समय में अगर इस दोष के कारण अगर कभी भी मेरा भक्त मुझे स्मरण नहीं कर पाया, तो भगवान कहते हैं कि तस्याम स्मरामि अहम, कफ पित्त वात का प्रॉब्लम उसको है मुझे नहीं है, भगवान को ये सारे प्रॉब्लम्स नहीं है, भगवान को कभी बीमारी नहीं आता है, आता है नहीं आता है, कौन बोलता है आता है कौन बोलता नहीं आता है भगवान को बीमारी, बताइए, हैं? सब लोग बोल रहे नहीं आता है, नहीं आता है। तो अभी अभी 15 दिन जगन्नाथ जी का दर्शन कर लिया, बोल क्या था, हैं? लीला था वो, भगवान कभी भी बीमार नहीं पड़ते हैं, कभी भी उनको एक अपवित्त वात दोष का प्रॉब्लम नहीं होता है, इसलिए तो वो सांत्वना दे रहे हैं भक्तों को कि वो भूल जाएगा, हो सकता है सब प्रॉब्लम दोष के कारण वो स्मरण नहीं कर पाएगा, लेकिन कहते हैं कि तस्याम स्मरामि अहम, मैं उसका स्मरण करता हूं अंतिम समय में, मैं स्मरण करता हूं उसका। अभी ये जो भगवान बीमारी का जो लीला करते हैं, देखिए ये बीमारी बहनाने का एक लीला करते हैं, नाटक करते हैं भगवान, बीमार वास्तव में नहीं पड़ते हैं, वो नाटक जानते हैं ना, बहुत सुंदर कथा है, उसको डिटेल तो चर्चा नहीं करेंगे, लेकिन भगवान ने नाटक क्यों किया, लक्ष्मी जी को टाइम देने के लिए, क्योंकि लक्ष्मी जी का एक कंप्लेन रहता था, जब देखो तब इतने मोटे मोटे पंडे, इतने बड़े बड़े पेट लेकर जब देखो तब इनके आजू बाजू घूमते रहते हैं, मेरे लिए तो कोई समय नहीं, मेरे लिए कोई टाइम ही नहीं, लक्ष्मी जी का हमेशा कंप्लेन रहता था। तो भगवान ने प्लान बनाया बीमारी का, सबको किया साइड और 14 दिन तक अपना कपाट बंद कर दिया केवल लक्ष्मी जी को टाइम देने के लिए। श्री भक्ति सिद्धार्थ सरोजिनी ठाकुर बताते हैं कि कभी कभी गृहस्थों को ऐसा टाइम देना चाहिए बीमारी बनाकर, बहाना बनाकर, लेकिन उन गृहस्थों की बात की गई है जो कि कंटिन्यू भगवत सेवा में लगे हुए हैं, लेकिन अगर हम उसी में फंसे हुए हैं तो उनकी बात नहीं कही गई है। तो भगवान बीमारी का बहाना बनाते हैं क्योंकि उनको एक लीला करना रहता है, लक्ष्मी जी को समय देना रहता है कि नहीं, लक्ष्मी जी को समय देने के लिए भगवान ने यह लीला किया, लेकिन कभी भी बीमार नहीं पड़ते हैं। बीमारी तो हमें आती है क्योंकि ये शरीर एक्चुअली संसार ही दुख है, भगवान ने भगवद गीता में बता दिया है, मुहर मार दिया है इस भौतिक संसार का, जब उत्पत्ति हुआ ना उसी समय क्या बताया गया इसके लिए, दुखालयम अशाश्वतम, ये दुखो काल है, दुख ही दुख भरा हुआ है, अब सुख है ही नहीं, लेकिन हम लोग क्या प्रयास कर रहे हैं सुख प्राप्त करने का। अभी विचार करिए जहां पे दुखी दुख भरा है उसके बीच में घुस के अगर सुख की खोज करें तो मिलेगा, जब भगवान ने बता दिया कि यहां पे दुख के सिवा और कुछ है नहीं, फिर भी हम सुख ढूंढते मतलब क्या है, सबसे बड़ा मूर्ख है हम, है कि नहीं। हमको सुख ढूंढने का प्रयास कभी भी नहीं करना चाहिए यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे दुख ही दुख भरा हुआ है, दुख ही दुख है ये। और ये शरीर जो है, जो क्या है, कपवात पित्त से बना हुआ एक बड़ा दोष है शरीर, जिसके कारण कुछ ना कुछ बीमारी लगी रहती है। इसलिए जब तक जीवा से हो सके तब तक हरिनाम का उच्चारण करते रहना चाहिए। देखते हैं ना, क्योंकि मन मालिक रोज जप करते 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 इशारा करते हैं, वो जब तो रोकते नहीं है, लेकिन जिनको जप में रुचि आ गया वो क्या करते हैं, कंटिन्यू इशारा करते हैं। क्या इसका मतलब क्या है, सांस जब तक चल रहे ना तब तक हरिनाम ले लो ले लो ले लो, कब जाएगा पता नहीं कब चढ़ जाएगा पता नहीं। देखिए इस बात को हरिनामाष्टकम में लिखा गया है, इस बात को कुलशेखर आडवाणी भी बोलते हैं, प्राण प्रयाण समय कफवात पित्त, प्राण जब प्रयाण करने का समय आता है ना तो उस समय कफवात पित्त ऐसा जकड़ लेता है ना कि उस समय हरि स्मरण नहीं आते हैं, कुछ भरोसा नहीं। कभी भी ये शरीर में कफवात पित्त का दोष बन सकता है और कभी भी हम उठ सकते हैं। इसलिए जब तक हो सके, जब तक ये सांस जब चलती है ना, तब तक हमको हरिनाम का उच्चारण कर लेना चाहिए। इस जीवा से जितना हो सके उतना हरिनाम का उच्चारण कर लेना चाहिए। हरिनामाष्टकम में बहुत सुंदर बात बताया गया कि निश्वास से नहीं विश्वास हो, निश्वास से नहीं विश्वास हो कदा रुद्यो भविष्यति। ये जो निश्वास है इसको ऊपर कभी भी विश्वास मत करना। निश्वास मतलब समझते है ना, जब हम सांस लेते हैं तो उसको सांस लेना बोला गया ना, सांस लेते हैं फिर उसके बाद छोड़ते हैं, तो छोड़ने की प्रक्रिया को निश्वास बोला गया है। निश्वास से नहीं विश्वास हो कदा रुद्यो भविष्यति। श्वास तो ले लिया लेकिन श्वास छोड़ने में कभी भी भरोसा मत करना, क्योंकि कभी भी छोड़ते समय कभी हरि बोल हो सकते हैं, कुछ भरोसा नहीं। इस सांस के ऊपर कभी भी विश्वास करने का नहीं, कभी भी ये चढ़ सकती है ऊपर और प्रभु भी ऊपर चढ़ सकते हैं। इसलिए हरिनामाष्टकम में बात को बहुत सुंदर बात को बताया गया कि निश्वास से नहीं विश्वास हो कदा रुद्यो भविष्यति। जब तक ये सांस चल रही है ना तब तक भगवत नाम हरि नाम का कीर्तन, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, कल परसों नहीं करने का, शीघ्रादि शीघ्र जब से मिल गया तब से कंटिन्यू इस हरि नाम का कीर्तन जितना हो सके उतना हमको जीवा से उच्चारण कर लेना चाहिए। तो भगवान को कभी भी बीमारी नहीं होता है, लेकिन भगवान बीमारी बहाना का बनाने का नाटक करते हैं, लीला करने के लिए, लक्ष्मी जी को टाइम देने के लिए। लेकिन फिर भी देखिए भगवान भक्तों के विरह में रह नहीं सकते। भगवान अभी अभी सुने ना आप लोगों ने किस प्रकार से उनकी रक्षा करने के लिए उनको आनंद आता है, जैसे कि गृहस्थ आसक्त व्यक्ति का मैंने उदाहरण दिया है ना कि उनको आनंद आता है। तो मतलब क्या है, भक्त के बिना भगवान नहीं रह सकते हैं। इसलिए जब ये बीमारी का बहाना भी बनाया ना तो 14 दिनों में ऐसा बौखला गए भगवान कि अभी 15वें दिन को बाहर निकलना ही कैसे भी करके उस समय लक्ष्मी जी के पास जाते हैं और कृष्णदास कविराज गोस्वामी कहते हैं चैतन्य चरितामृत में इस बात को कि अभी भगवान लक्ष्मी जी से परमिशन लेते हैं, क्योंकि अभी उनको भक्तों का विरह सताने लगा, बहुत हो गया अभी ये बीमारी का नाटक। अभी सोचिए कोई व्यक्ति बीमारी का बहाना बना के बेड पे लेट जाए कितना दिन तक लेटेगा। इस शरीर को यंत्रारूढ़ानि माया बोला गया है, ये शरीर यंत्रवत है, अगर हम इसको एक जगह पे पड़े रहेंगे ना वो जलने लग जाएगा, इसमें ऑटोमेटिक उठना बंद हो जाएगा। इसलिए हम ये शरीर को ज्यादातर लेटा के भी नहीं रख सकते हैं। तो कोई व्यक्ति बीमारी का बहाना बना ले तो उसका क्या हालत होगा, एक दिन वो परमानेंटली बेड पे हो सकता है। क्योंकि जब तक ये यंत्रारूढ़ानि माया, जब तक ये यंत्रवत है, जब तक हम इसको सेवा नहीं देंगे, काम नहीं देंगे, तब तक इसको चलाना मुश्किल हो जाएगा। कोई व्यक्ति बोलेगा कि नहीं मैं कुछ नहीं, मेरे पास इतना धन संपत्ति कि मैं ऐसो आराम में केवल बेड के ऊपर पड़ा रहूंगा, तो वो परमानेंटली बेड के ऊपर पड़ा रह जाएगा। उसको एक्टिविटी चाहिए शरीर को, इसलिए इसको यंत्र बताया गया है, एक्टिविटी कुछ ना कुछ काम चाहिए। अभी भगवान जगन्नाथ भी और उनके भक्तों का इतना भी राह सताने लगा उनको कि अभी प्लान बनाने लगे कि कैसे बाहर निकलो, अभी बहुत हो गया, अभी भक्तों का दर्शन करना है और मुझे रथ के ऊपर जाके बैठना है और एक साथ में हजारों लाखों लाखों भक्तों का दर्शन करना है, मुझे दर्शन देना है करना है जो भी समझो। भगवान बहुत व्याकुल होने लगे और उसको फिर लक्ष्मी जी के पास जाकर परमिशन लेते हैं और कृष्णदास कविराज गोस्वामी कहते हैं
तहार समाते लया भक्त सुख देते रथ चढ़ आइला प्रभु विहार करे ते
तहार सम्मति लैया। लक्ष्मी जी से परमिशन मांगते भगवान की, बस अभी मैं मुझे मेरे भक्तों का दर्शन करना है और मैं नहीं रुक सकता हूँ, कृपया मुझे परमिशन दो। लक्ष्मी जी बोलती हैं, उनसे सम्मति लेकर भगवान भक्तों को सुख देना चाहते हैं, भक्त सुख देते सुख देना चाहते हैं, भक्तों के साथ आदान प्रदान करना चाहते हैं भगवान जगन्नाथ। और उसके बाद जब ही परमिशन मांगते हैं तो लक्ष्मी जी से परमिशन मांगते हैं कि अभी मुझे जाने दो, बस हो गया। तो लक्ष्मी जी बोलते हैं ठीक है जाओ, लेकिन जल्दी आ जाना, भगवान विचार करते एक बार जाने तो दो, फिर बाद में बात का बात देख लेंगे, जल्दी आ जाना। तो लक्ष्मी जी के परमिशन लेके भगवान निकलते हैं और रथ के ऊपर बैठ के हजारों लाखों लाखों भक्तों को दर्शन देते हैं प्रभु जगन्नाथ, और उनके साथ उन भक्तों के साथ आदान प्रदान करते हैं। तो बहुत सुंदर लीला है, हम कभी और भी चर्चा करेंगे, लेकिन कहने का तात्पर्य यह है कि भक्तों की भगवान का एक तरह से भगवान का जीवन ही भक्त है। भगवान इस बात को बताते मेरा जीवन भक्त है, मैं भक्तों के बिना रह नहीं सकता हूँ, भक्तों के साथ आदान प्रदान किए बिना मैं कभी भी नहीं रह सकता हूँ। तो भगवान कहते हैं कि इस दोष के कारण उस भक्त को भले से मैं अंत समय में नहीं आ जाऊं, लेकिन तस्याम स्मरामि अहम, मैं उसका स्मरण करता हूँ, इसलिए कोई चिंता करने वाली विषय नहीं है। लेकिन एक बात और भी बताते हैं भगवान, ये तो आश्वासन दिया ही और साथ साथ में एक गारंटी भी देते हैं कि अगर मैं ऐसा ना करूं तो कहते हैं कि यदि अहम न स्मरामि, यदि मैं उस भक्त का स्मरण नहीं करता हूं ऐसे समय में, यदि न हम स्मरामि न च कृतज्ञो मत समा, कहते भगवान कि अगर मैं ऐसा नहीं करूं तो मेरे जैसा कृतज्ञ व्यक्ति संसार में कोई नहीं है। ये भगवान बताते कितनी बड़ी बात, कृतज्ञ मतलब समझते हैं ना है? क्या है कृतज्ञ मतलब, कि जो एहसानों को कोई एहसान किया उसके ऊपर या कुछ उसके लिए सेवा किया और वो व्यक्ति भूल जाता है, एहसानों को भूल जाना उसको कृतज्ञ कहते हैं, और एहसानों का बदला चुकाने की प्रवृत्ति, बदला चुकाने की भावना रखना और बार बार यही सोचते रहना कि वो प्रभु ने हमारे लिए एक किया तो मैं उसके लिए कुछ ना कुछ करूंगा, इसको कृतज्ञ बोलते हैं। और भगवान कहते हैं मैं कृतज्ञ श्रीमणि हूँ, कृतज्ञ नहीं हूं मैं। भगवान एक गारंटी देते हैं कि मैं उसकी रक्षा करता हूँ, मैं उसका स्मरण करता हूँ। रामायण में प्रसंग जानते होंगे आप सभी लोग कि एक बार की घटना है कि माता सीता की इच्छा हुई कि प्रभु के जो नजदीक निकट के जो भक्त है उनका नाम जानने की इच्छा हुई, तो प्रभु के पास गई माता सीता, बोले कि प्रभु मैं आपके भक्तों का जो आपके नजदीकी भक्त है जो आपके बहुत प्रेमी भक्त है उनका मैं नाम जानना चाहती हूँ। तो प्रभु ने बोला कि ठीक है उधर डायरी जाकर उसमें पढ़ लो। तो सीता माता गई उस डायरी को घुमा रही, एक एक करके पलटी मारते अलग 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 कितने भक्तों का नाम पढ़ते गई और पूरा डायरी खत्म कर दिया है? लेकिन क्या हुआ पता है, उसमें हनुमान जी का नाम नहीं था। सीता माता क्योंकि ये देखी थी कि हनुमान जी कितने प्रेमी सेवक है भगवान के, कितने विश्वसनीय सेवक है, इसलिए पूरा डायरी वो क्यों पढ़ डाला पता है, हनुमान का नाम ढूंढने के लिए पूरा डायरी पढ़ रहा, लेकिन हनुमान का नाम मिला नहीं। अभी हनुमान का नाम नहीं मिला तो अभी ये मैसेज तो तुरंत हनुमान के पास पहुंचा ही कि तुम तो इतना सेवा करते हो, तुम्हारा तो नाम ही नहीं लिया गया, ये गलत मैसेज तो बहुत जल्दी पहुंचता है उसको पहुंचने में देरी नहीं लगता है, अच्छे मैसेज पहुंचने में थोड़ा देरी लगता है लेकिन गलत मैसेज पहुंचने में बिल्कुल देरी नहीं लगता है। माता सीता ने जाकर हनुमान जी को बोला कि आप तो इतना सेवा करते हो, आप अनन्य भक्त हो भगवान के, फिर भी भगवान के जब मैं भक्तों के उनके प्रेमी भक्तों का नाम पूछी तो उसमें आपका नाम ही नहीं है, भगवान ने जो डायरी मुझे दिया उसमें नाम नहीं है। तो एक समय के लिए हनुमान जी बहुत विचलित हो गए, क्या बोल रही माता सीता, इतना दिनों का मेरा मेहनत पानी सब बेकार थोड़ा चिंतित हुए, लेकिन क्या चिंता होने के बाद ना तुरंत कहां गए पता है, इधर उधर जाके कुछ बोले नहीं या हताश नहीं हो गए, प्रभु के पास गए सीधा, भगवान के पास गए कि प्रभु मैं क्या सुन रहा हूँ, माता सीता बोले कि आपके भक्तों में मेरा लिस्ट मेरा नाम ही नहीं है, आपके प्रेमी भक्तों के लिस्ट में मेरा नाम नहीं है। तो भगवान श्री राम मुस्कुराने लगे कि हनुमान हाँ बराबर उसमें नाम नहीं था, लेकिन मेरे पास एक और डायरी है, तो भगवान अपने हृदय के पास से एक और छोटी सी डायरी निकालते हैं और हनुमान जी को देते हैं कि लो इसमें पढ़ो और इसमें देख लो तुम्हारा नाम है कि नहीं। तो हनुमान जी पढ़ते हैं तो उसमें सबसे पहला नाम हनुमान जी का था। लेकिन यहाँ पे प्रभु राम क्या बोलते बताए कि हनुमान उसमें उन भक्तों का नाम था जो नित्य प्रतिदिन मेरा कीर्तन भजन करते रहते हैं, कभी भी पूरे दिन मेरे चिंतन में लग रहते हैं। जो माता सीता ने जो डायरी देखा ना उसमें उन भक्तों का नाम है जो कि पूरा दिन मेरा भजन करते रहते हैं। लेकिन मेरे पास ये जो डायरी है ना हनुमान, इसमें उन भक्तों का नाम है जिनका स्मरण मैं नित्य प्रतिदिन करता हूं। ऐसे प्रेमी भक्त इसको बोलते हैं अनन्य भक्ति। और इसके लिए यहाँ पे भगवान यहाँ पे विश्वास दिला रहे हैं कि ऐसे भक्तों का मैं स्मरण करता हूँ मृत्यु के समय में, मैं स्मरण करता हूँ। तो एक बहुत सुंदर बात यहाँ पे बताया गया है। तभी एक प्रश्न उठ सकता है, कितना समय, तो एक प्रश्न उठ सकता है कि क्या प्रमाण है। हम लोग प्रमाण के बिना जीते नहीं है, क्या प्रमाण है, कुछ दिखना चाहिए। शास्त्रों के बातों पर इतना जल्दी विश्वास नहीं आ पाता, हम प्रमाण मानते हैं, है ना, कि कुछ तो प्रमाण, ठीक है शास्त्रों में से ही प्रमाण बोले कि कुछ तो प्रमाण देना चाहिए कि कैसे भगवान ने रक्षा किया, किसके क्या किया ना मरते समय का, कि मरते समय भगवान पहुंचे वहां पे। यहाँ पे भगवान श्री हरि अपने मुख से बताया ये बात को क्लियर किए, तो इसका क्या प्रमाण है। प्रमाण तो भागवत में अनेकों प्रमाण है, लेकिन एक प्रमाण की हम चर्चा करते हैं, केवल 10 मिनट का बाकी है समय, तो उसको करके हम समाप्त करते हैं। देखिए भागवत में मुचकुंद का भगवान ने रक्षा तो किया ही, अंत में से जाके सोए थे, सोए हुए मुचकुंद का रक्षा किया। लेकिन एक बहुत सुंदर प्रसंग है भीष्म पितामह का, कि भीष्म पितामह देखिए 10वें दिन युद्ध में क्या हुआ, भीष्म पितामह सैया पे लेट चुके, धराशायी हो गए भीष्म पितामह। लेकिन देखिए युद्ध, महाभारत का युद्ध समाप्त हुआ, समाप्त होने के पश्चात क्या हुआ कि युधिष्ठिर को राजा बना दिया गया। उनका राजा बनाने के पश्चात भगवान ने एक प्लान बनाया। अभी तक भीष्म पितामह ने अपने देह को नहीं त्यागा है, महाभारत का 18 दिन का युद्ध समाप्त, सब लोग अपने अपने निवास स्थान पे, सब लोग वहां पे राजा घोषित कर दिया गया युधिष्ठिर महाराज को। और यहाँ पे अकेले कौन पड़ा हुआ है, पूरे युद्ध कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में भीष्म पितामह पड़े हुए है। वो अपनी, क्योंकि उनका उनको इच्छा मृत्यु का वरदान था, अपने इच्छा से वो शरीर त्यागने का वेट कर रहे थे, कुछ समय का वेट कर रहे थे वो। लेकिन यहाँ पे भगवान देखिए अंत समय में वहां पे भीष्म पितामह पड़े हुए हैं, ऐसी अर्जुन ने ऐसे छल्ली कर दिया था, उनको बाढ़ों की सैया बना दिया था, वहां पे गिरे धराशायी होकर भीष्म पितामह पड़े हुए हैं। और यहाँ पे भगवान ने क्या एक प्लान बनाया पता है, महाभारत का युद्ध प्रारंभ होने से पहले किसको मोह हुआ, अर्जुन को, जिसके कारण ने पूरा भगवद गीता सुनाया, तब जाके उसका मोह दूर हुआ, तब जाके युद्ध हुआ, है ना। लेकिन अभी महाभारत का युद्ध समाप्त हुआ, अभी समाप्त होने के बाद युधिष्ठिर को मोह हो गया। युधिष्ठिर को क्या मोह हो गया कि मेरे कारण इतने 60 करोड़ महिलाएं जो विधवा हो गई, मेरे कारण केवल मैं सुख प्राप्त करें, मैं राज्य प्राप्त करने की इच्छा रखा, इसके कारण इतने सारे लोग मारे गए, उसका जिम्मेदार हूं, सबसे बड़ा शोक बन के बैठा होगा। अभी ये शोक ऐसा बना कि संसार के विश्व के सारे ऋषियों ने सब लोग आके उनको समझाया, लेकिन किसी से समझे ही नहीं, क्योंकि एक राजा जब ना शोकाकुल होता है ना, पूरे संसार को समस्या बन जाता है। राजा चिंतित मतलब पूरा प्रजा असुरक्षित है, समझो, राजा कभी भी चिंतित नहीं होना चाहिए। इस चिंता को देखकर बड़े बड़े ऋषि मुनि आकर राजा को युधिष्ठिर को समझाया, लेकिन युधिष्ठिर समझने के लिए तैयार नहीं थे, क्योंकि ये जो मोह था ना, ये भगवान स्वयं ने उनको मोह कराए थे। क्यों, क्योंकि इस मोह को दूर करने के लिए और अपने विष्णु पितामह अपने भक्त को अंत समय में सामने दर्शन देने के लिए भगवान ने प्लान बनाया था, और युधिष्ठिर को और पूरी प्रजा को ले जाकर कुरुक्षेत्र युद्ध स्थल में खड़ा किया, और वहां पे विष्णु पितामह के मुख से युधिष्ठिर महाराज के मोह को दूर कराए। उस समय भीष्म पितामह ने इस बात को बोला कि हे प्रभु, अंत समय में मैं तुम्हारे पास नहीं आ पाया तो तुम आ गया प्लान बना के, हे केशव, वाह केशव वाह,
भीष्म पितामह बोलते हैं कि मैं नहीं आ पाया, मैं बाड़ों की सैया में लेटा हुआ था, मैं तुम्हारे पास नहीं आ पा रहा था, लेकिन तुमने प्लान बना के मेरे पास आ गया। अभी कहते हैं कि जब आ गए ना तो ठीक है, आ गए तो अब खड़े रहो। भीष्म पितामह बहुत सुंदर स्तुति करते हैं वहां पे, वो स्तुति बहुत सुंदर है, वो कभी चर्चा करेंगे। लेकिन भीष्म पितामह इस बात को वहां पे भगवान को बोलते हैं, कितना लेट किया ना, अभी सोचिए 10वें दिन घायल हो चुके थे भीष्म पितामह, अभी यहाँ पे 18 दिन समाप्त होने के बाद पूरा एटलीस्ट 72 डेज में वहां पे पहुंचे थे, 72 डेज 70 दिनों बाद भगवान सारे लोग को लेके पहुंचे थे उधर। मतलब 70 दिनों तक भीष्म पितामह इस बाड़ों की सैया पे लेटे हुए थे वहां पे, भगवान ने प्लान बनाया और भीष्म पितामह को दर्शन आया। अभी भीष्म पितामह देखिए कृष्ण टेढ़े और कृष्ण के भगत भी टेढ़े ही होते हैं, बोले कि लेट किया ना, अभी आ गए ना, अभी खड़े रहो। तो मान लो भगवान कहते कब तक खड़े रहना है मुझे, कब तक खड़े रहना है, तो भीष्म पितामह बोलते हैं कि देखो अभी तुम आ गए ना, कब तक खड़े रहना। मान लो कि कृष्ण कहते हैं कि कब ये शरीर कब छोड़ोगे, क्योंकि इच्छा मृत्यु का वरदान था, कब शरीर छोड़ोगे। तब उस समय पितामह भीष्म कहते हैं कि सदैव देवो भगवान प्रतीक्षताम कलेवरम यावदम इनोमिहम प्रसन्न हासा ऋण लोचन नसा। भीष्म पितामह कहते हैं कि प्रभु अभी आप आ गए, अभी कब ये शरीर छोड़ूंगा मैं, वो मेरी इच्छा, आपका काम खड़े रहना है, खड़े रहो। देखिए रुक्मणी का फोन तक मत उठाना, खड़े रहो, जब तक मेरी इच्छा है तब तक खड़े रहो। और कैसे खड़े रहो, देखो ये भी बताते हैं, वो स्तुति करके ये भी बताते हैं कि कैसे खड़े रहना है। प्रसन्न हासा रुड़ लोचन उलसा, प्रसन्न मुख, प्रसन्नता मुख, स्माइल हो मुख पे, बहुत सुंदर सा दर्शन देते हुए सुंदर सा मुखड़ा हो, प्रसन्न आता प्रसन्न मुखड़ा हो, ये सारे पोज बता रहे हैं। कैमरा मैन बोलता है ना, पोज मैं बताता हूँ फोटो क्लिक करने से पहले, स्माइल बोलता है ना। तभी भीष्म पितामह बोलते हैं कि अभी ये हिनों में हम, जब तक विश्वनाथ चतुर्थ ठाकुर इस हिनों में हम के शब्द के ऊपर टीका लिखते हुए कहते हैं कि भीष्म पितामह बोलते हैं ये मेरी इच्छा है, ये तुम्हारी इच्छा नहीं, तुमको तुम्हारा काम है खड़े रहना, तुम खड़े रहो। और भीष्म पितामह पूरी स्तुति करने लगे, जब बहुत लंबी स्तुति करते हैं भीष्म पितामह, बहुत सुंदर स्तुति है, तो कहते हैं कि जब तक मैं चाहूं तब तक तुम खड़े रहो। देखिए जगन्नाथ स्वामी नयन पथ भामी भवतु मे, सब भक्त लोग प्रार्थना करते कि प्रभु आप हमारे नयन पथ के सामने आइए, प्रार्थना करते हैं। लेकिन यहाँ पे भगवान आ गए तो भीष्म पितामह दादागिरी कर रहे हैं, मेरी इच्छा है जब तक मैं नहीं चाहूं तब तक खड़े रहो। तो ये देखिए प्रमाण है कि भगवान अंत समय में आते हैं। भीष्म पितामह शरीर छोड़ने का जब हुआ तो भगवान आए उनको दर्शन देने के लिए, इतना लंबा चौड़ा प्लान बनाया, युधिष्ठिर को ऐसा मोह दिलाया कि विश्व का कोई भी ऋषि मुनि उनका मोह दूर करने के लिए सक्षम नहीं हुआ। और अंत में सब लोग लेके सारे उस कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में पहुंचे जहां पे भीष्म पितामह ने बहुत सुंदर उपदेश दिया हुआ है, बहुत सुंदर उपदेश दिया, और साथ साथ में भगवान कृष्ण की स्तुति करते हैं। तो इस प्रकार से देखिए भगवान हमारी रक्षा करते हैं, इसमें कोई दुराय नहीं है। यही बात चेतन चरिता में हरिदास ठाकुर, चेतन चरिता में कृष्णा कविराज गोस्वामी वर्णन करते हैं हरिदास ठाकुर की जीवनी का। वहां पे वर्णन कहते हैं कि हरिदास ठाकुर के अंतिम इच्छा हुई, हरिदास ठाकुर ने अपने जीवन में कुछ नहीं मांगा था चेतन महाप्रभु से, लेकिन अंत में एक इच्छा किया चेतन महाप्रभु से उन्होंने कि प्रभु मैं अभी आपसे पहले मैं जाना चाहता हूँ, आपसे पहले मैं इस शरीर को छोड़ के जाना चाहता हूँ, क्योंकि आप चले गए और मैं आपके विरह को बर्दाश्त नहीं कर सकता हूँ। तो मेरी ये इच्छा है प्रभु कि आप मेरे सामने खड़े रहिए और मैं आपको देखते हुए कहते हृदय धरिगो तोमार कमल चरण, हृदय में मैं आपके चरण कमलों का धारण कर लूं और नए नए देखिगो तोमार ये चांद बदन, ये जो चांद बदन है आपका बहुत सुंदर सा बदन है, इसका मैं दर्शन करते रहूं और जिह्वा उच्चारते जिह्वा से आपके नामों का उच्चारण करता रहूं और मैं अपने प्राण को त्याग दूं प्रभु, यही मेरी इच्छा है। इस प्रकार से हरिदास ठाकुर भी बहुत सुंदर प्रार्थना करते हैं। प्यारों बहुत अच्छी चर्चा है, लेकिन समय अनुसार जितना हुआ मैं इसको बताने का प्रयास किया। करने का बात यही है भक्तों कि देखिए कि भगवान रक्षा करते हैं, हमको उसके लिए क्या करना है, हमको केवल उनके अनन्य भाव से भक्ति करना है। और वास्तव में अगर कोई विश्वास करने लायक है ना, परम पूज्य राजा गोविंद गोस्वामी महाराज एक बात बहुत सुंदर बात को बताते हैं कि देखिए विश्वास करने वाला अगर कोई व्यक्ति है ना, इस पे विश्वास कृष्ण के ऊपर विश्वास करना चाहिए, भगवान के ऊपर विश्वास करना चाहिए। इस संसार में हम अलग अलग लोगों के ऊपर विश्वास करते हैं, आजू वाला करेगा, बाजू वाला हमारी रक्षा करेगा, ऊपर वाला रक्षा करेगा, ऊपर वाला कौन, चौथे पे है तो पांचवे माल वाला, या फिर निराकार ब्रह्म कौन, ऊपर वाला कौन रक्षा करेगा, तो अलग अलग लोगों के इस संसार में विश्वास करते हैं। लेकिन राधा महाराज एक बहुत सुंदर बात को बताते हैं कि ना तो आलू वाला रक्षा करेगा, ना तो ऊपर वाला रक्षा करेगा, ना तो नीचे वाला रक्षा करेगा, रक्षा करेगा तो केवल नीलाचल वाला करेगा। तो इसलिए विश्वास करने वाले अगर कोई व्यक्ति है ना, तो उनके ऊपर विश्वास करना चाहिए, भगवान के ऊपर करना चाहिए, और वही हमारी रक्षा कर सकते हैं, वही हमको सब कुछ दे सकते हैं, बिना मांगने की जरूरत नहीं। हम मांगे भी कितना मांगेंगे, कितना मांगे, लेकिन प्रभु एक बार दिए तो हमारा मांगना सब फेल हो जाएगा, इतना दे देंगे कि, इसलिए मांगना है ही नहीं, क्या करना है, भजन करना है बस, एक तो भाव से, अनन्य भाव से केवल भजन करो, कुछ मांगने की जरूरत नहीं। योग क्षेम वहां में हम, ये भगवान का ठेसन है, भगवान करे, हम अपना कार्य करें, वो अपना काम करेगा, वो अपना करते हैं, इंद्रिय भजन है, वो अपना काम करे, हम अपना काम करें। तो हमको क्या करना है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 राम, बस यही करना है, बाकी प्रभु अपना काम करेंगे, ठीक है। हरे कृष्णा, थैंक यू वेरी मच।